नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सीपी राधाकृष्णन ने आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ज्ञान भारतम पोर्टल से देश की प्राचीन ज्ञान संपदा का संरक्षण होगा। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए राजस्थान को 580 करोड़ रुपए और केंद्रीय वित्त आयोग ने शहरी अनुदान के तहत 541 करोड़ रुपए की राशि जारी की। प्रदेश भर में कल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 498 बेंचों का गठन। और राज्य में कल और परसों होने वाली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई।
आई चंद्रावरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन
डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस to the constitution of india
as by law established
and that i will faithfully discharge the duty upon which i am about to enter
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। श्री चंद्रपुरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 को तमिलनाडु में हुआ। उन्होंने वस्त्र निर्यातक के रूप में कामयाब सफर तय किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे शुरुआती दिनों में ही आरएसएस से जुड़े। वे 1996 में तमिलनाडु भाजपा के सचिव बनाए गए। 1998 में वे कोयंबटूर से सांसद चुने गए। श्री राधाकृष्णन झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश में कहा कि श्री राधाकृष्णन ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने और समाज सेवा के लिए जीवन समर्पित किया है। श्री मोदी ने उनके सफल उपराष्ट्रपति कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज्ञान भारतम पोर्टल के माध्यम से भारत के प्राचीन ज्ञान को संरक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही दुर्लभ ग्रंथों को विद्वानों और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाएगा। श्री मोदी ने ग्रंथों में निहित दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला।
पहले वेदों को श्रुति के आधार पर अगली पीढ़ी को दिया जाता था और हजारों वर्षों तक वेदों को बिना किसी त्रुटि के ऑथेंटिसिटी के साथ प्रिजर्व किया गया। हमारी इस परंपरा का दूसरा पिलर है इनोवेशन, तीसरा पिलर है एडिशन, यानी हर पीढ़ी पुराना ज्ञान संरक्षित करने के साथ साथ नया कंट्रीब्यूट भी करती थी।
कल से शुरू हुए 3 दिन के इस सम्मेलन में पांडुलिपि विरासत से देश की ज्ञान विरासत को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सम्मेलन के माध्यम से प्रमुख विद्वानों, संरक्षणवादियों, प्रौद्योगिकीविदों और नीति विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया गया है। सम्मेलन में दुर्लभ पांडुलिपियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण तकनीक और मेटाडेटा मानक की प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वहीं केंद्रीय वित्त आयोग ने शहरी अनुदान के तहत 541 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इससे शहरी विकास और स्कूल शिक्षा को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर इस बारे में आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने इस राशि के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। श्री शर्मा ने कहा कि इस राशि से राज्य सरकार कार्य योजना बनाकर दोनों ही क्षेत्रों में विकास को गति देने का काम करेगी। अजमेर में आना सागर वेटलैंड पर बने 7 बंदर्स को तोड़ने की कार्रवाई आज से शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद करीब 11.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पार्क को ध्वस्त किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है।
2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। आनासागर के आसपास वेटलैंड खत्म करने और मास्टर प्लान की अवहेलना को लेकर पूर्व पार्षद ने 9 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में केवियट लगाई थी, जिस पर सुनवाई के बाद 6 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 7 वंडर तोड़ने के लिए 6 माह का समय दिया, जो आगामी 17 सितंबर बुधवार को समाप्त हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा समय अवधि समाप्त होने से पूर्व ही आज से ही इसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2025-26 के लिए नई अफीम नीति घोषित कर दी है। इसके अनुसार बिना चीरे की सीपीएस पद्धति से खेती में प्रति 10 आरी 80 किलो से कम डोडा देने वाले किसानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। जिन किसानों ने पिछले साल 10 आरी पर 90 किलो डोडा जमा करवाया है, उन्हें इस साल चिराई का पट्टा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत कल लगाई जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये अदालत राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ सहित प्रदेश की सभी निचली अदालतों में लगेगी। इसके साथ ही राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से विभिन्न मामलों को निपटाया जाएगा। इसके लिए कुल 498 बेंचों का गठन किया गया है। मामलों की सुनवाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल और परसों आयोजित की जाएगी। राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से होने वाली ये परीक्षा 10,000 पदों के लिए ली जा रही है। ये परीक्षा राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर होगी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय में ADG भर्ती विपिन पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम 2 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।
पहली बार तो सभी परीक्षा केंद्रों के सभी रूम से लाइव फीड पुलिस मुख्यालय को आएगी। सभी जगह अनिवार्य किया गया है, कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी कमरा बिना लाइव के नहीं है। सभी कमरों में CCTV लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम यहाँ पर हमारा काम कर रहा है। तो हमारा बायोमेट्रिक भी है और फोटो मैच भी होगा। फिर बायोमेट्रिक के बाद अगला जो चरण है वो हम सभी सेंटरों पर जैमर लगाए हैं, ताकि किसी तरह की जो मोबाइल डिवाइस के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो दिक्कतें आती हैं और जो समस्या आती है उससे बचा जा सके।
केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव आज सिरोही प्रवास पर रहे। उन्होंने माउंट आबू में माइंड बॉडी मेडिसिन राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 4 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन ब्रह्म कुमारी संस्थान में किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री जाधव ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय तनाव से भरा हुआ है, ऐसे में आहार और दिनचर्या को संतुलित कर तथा योग को अपनाकर जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। श्री जाधव ने संस्थान प्रमुख राजयोगिनी मोहिनी दादी से भी मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विश्व शांति के लिए संस्थान द्वारा सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अध्यात्म से जुड़कर कई तरह के व्यसनों से बचा जा सकता है।
शांति के लिए ही संदेश यहाँ पर दिया जाता है कि लोग जैसे कोई बीमारी होती है तो उसके ऊपर उपचार हम करते हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि मेंटली लोगों को बहुत सारी तकलीफ है। बहुत सारे युवा होंगे, लोग होंगे सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे युवा है हमारे व्यसनाधीन होते जा रहे हैं। तो ये सभी लोगों को मेंटली ठीक करने के लिए ये जो इनके केंद्र जो जगह जगह पे चलते हैं, व्यसन मुक्ति केंद्र हो या पीसफुल माइंड रखने के लिए जो उनका भी जो भी काम चलता है, तो बहुत ही अच्छा काम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर चल रहा।
जीएसटी को युक्तिसंगत बनाया जाना स्वास्थ्य क्षेत्र पर सकारात्मक और दूरगामी परिणाम देगा। ये निर्णय सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा के सरकार के विजन को दर्शाता है। डॉक्टरों, अस्पतालों और उपचार केंद्रों की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है। विभिन्न आवश्यक दवाइयों को कर मुक्त रखा गया है। राजस्थान केमिस्ट अलायंस के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने बताया कि जीएसटी कटौती से आम लोगों को फायदा होगा और मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे।
गवर्नमेंट ने जो जीएसटी में बदलाव लाई है और जो टैक्स कम किया है दवाइयों पे, तो उससे दवाइयों की एमआरपी कम होगी। अमूमन 7% से 10% तक का फर्क दवाइयों पे आएगा और ये डिवाइसेज पे भी आएगा। और एमआरपी कम होने से पेशेंट को इससे काफी राहत मिलेगी। काफी ऐसी दवाइयां हैं जो 0% टैक्स पे की है, कैंसर की ऐसी दवाइयां हैं, तो पेशेंट और रोगियों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और हमारी एसोसिएशन का यही प्रयास है कि सीधा लाभ इसका आम जनता को दे।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीपी राधाकृष्णन ने आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ज्ञान भारतम पोर्टल से देश की प्राचीन ज्ञान संपदा का संरक्षण होगा। प्रदेश भर में कल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 498 बेंचों का गठन। और राज्य में कल और परसों होने वाली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।